me दादा जी महाराज के चरणों में नमो सुख सर्वत प्रार्थना करता हूँ तो उत्तम माता धर्म पर अपने मंगल में साधार्मिक आध्यात्मिक प्रवचनों से हम सबको प्रदान करें।
मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताई जाते भये अरहंता दिमा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के दस लक्षण महापर्व की आचार्य कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज कल जब पर्युषण की पहली सुबह थी तब हम बैठे थे और हमने सोचा था कि आगे आने वाले दिनों में भी हम अपने जीवन के बारे में विचार करेंगे। 365 दिनों में हमने अपनी खुद की इच्छा से अपने खुद की रुचि से ये तय करा है कि 10 दिन जरूर अपने जीवन के बारे में सोचेंगे। कल कषायों की तासीर समझी थी कि कषायें मालूम पड़ती हैं कि बहुत छोटी सी हैं पर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वे इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हमारे जीवन को नष्ट कर देती हैं। हमें कषायों को दिशा देनी है। कषायों के बारे में इतना ही है कि वो चाहे क्रोध हो चाहे मान हो चाहे माया हो या लोभ हो कषायें सब एक ही तासीर वाली हैं। इतना जरूर है कि क्रोध सबसे आखिरी में आता है रखा जरूर उसको पहले है शुरुआत होती है लोभ से। जब भी हमारे भीतर में किसी भी चीज का लोभ होता है उस चीज को पाने की हम कोशिश करते हैं उस चीज को जब आसानी से नहीं पा पाते हैं तब मायाचारी करते हैं। मायाचारी अगर प्रकट हो जाती है तो हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है। हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है तो हमें क्रोध आ जाता है। कषायें सब बराबर की हैं पर फिर भी लोभ को सबसे बड़ा माना है। लोभ दिखता नहीं है क्रोध तो दिखाई पड़ जाता है पर उस क्रोध के पीछे जो उसका कारण बैठा हुआ है वो नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है भैया। आज जबकि मृदुता का दिन है हमें थोड़ा सा विचार करना है कि जब हम यहां इस जगत में नहीं थे जिस रूप में हम हैं आज उस रूप में नहीं थे तब भी ये सारा जगत था जिस घर में आज हम पैदा हुए हैं, उस घर में जब हम पैदा नहीं हुए थे तब भी ये घर ऐसा ही था, सारा काम सबका चलता था। हमारी अपनी एग्जिस्टेंस कोई दूसरा फील करे तो ठीक है, वरना हम अपनी एग्जिस्टेंस फील करवाने के चक्कर में और अपनी एग्जिस्टेंस खो रहे हैं। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिटा चली, मैं नीर भरी दुक्की बदली। महादेवी जी को शायद ये लिखना पड़ा, इतने बड़े आकाश में, इतने विस्तृत आकाश में एक नन्हा सा बादल, एक नन्ही सी बदली, अपना क्या परिचय दे कि मैं ऐसी हूं और मैं वैसी हूं। वो तो कहती है कि मेरा कोई इतिहास भी नहीं है, अभी अभी उमड़ी हूं, अभी बरस करके समाप्त हो जाऊंगी। ऐसा ही हम सबका जीवन है। चार दिन के लिए हम आते हैं और यहां पर सफल या असफल होकर के वापस लौट जाते हैं। मृदुता हमारे जीवन को सफल बनाती है, अहंकार हमारी बड़ी से बड़ी असफलता है। अगर मृदुता को हम जीवन माने तो अहंकार हमारी मृत्यु है। अहंकार के मायने क्या है? मैं जितना और जैसा नहीं हूं उतना और वैसा मैं प्रशंसा चाहता हूं, यह अहंकार है। मैं जितना योग्य हूं उतनी प्रशंसा चाहता हूं, तो वो अभिमान है। और मैं ना प्रशंसा चाहता हूं ना सम्मान चाहता हूं, पर मैं अपमान नहीं चाहता, ये स्वाभिमान है। और चाहे कोई मेरा अपमान करे और चाहे कोई मेरा सम्मान करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब ये निराभिमान की स्थिति है। हमारा प्राप्तव वही है, हमारा स्वभाव ही वो है। हम भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि जब जब भी हम गलत करते हैं तब तब हमें जरूर से क्या सही है ये तो ख्याल आता होगा, वरना हम गलत कर ही नहीं सकते। गलत करने के बाद याद आता है और गलत करने से पहले याद आता है कि सही क्या है। जब जब हम कठोर होते हैं उसके पहले याद आता है कि हमारी मृदुता क्या है, और कठोर हो जाने के बाद भी अपनी मृदुता का एहसास होता है। और सच्ची मृदुता तो वो है जो बच्चन ने लिखा, मेरी मृदुता बहुत गई रगड़ी मछली है, मेरी मृदुता बहुत गई रगड़ी मछली है, पर नहीं हुई कठोर, लगता है असली है। वो हमारा स्वभाव है। हम कितने भी, जैसे हमने कल समझा था कि कितने भी हम क्रोध में गिर जाएं, लेकिन अल्टीमेटली हम आते हैं अपने उस अक्रोध की स्थिति में ही, जो हमारा स्वभाव है। आज यदि हम थोड़ा बहुत अपनी योग्यता से अधिक सम्मान चाहने की कोशिश में हैं, तो हमें अपने भीतर झांक के देखना चाहिए कि कहां क्या कमी है, हम क्यों नहीं अपनी योग्यता बढ़ाते हैं ताकि हम उस सम्मान के लायक हो जाएं। हम तो तीन लोग के नाथ हो सकते हैं, हम तो उतना बड़ा सम्मान पा सकते हैं, फिर इस छोटे छोटे से सम्मान पाने के लिए अपना ईमान क्यों खो देते हैं? अगर ऐसा थोड़ा सा हमारा विचार हो जाए, मैं तो एक ही चीज जानता हूं भैया, अच्छे विचार हो और अच्छा दृष्टिकोण हो तो सब अच्छा है, और विचार अच्छे ना हो और दृष्टिकोण अच्छा ना हो तो दुनिया जितनी अच्छी दिखाई पड़ती है उतनी अच्छी है नहीं। ये संसार इसी का नाम है, जहां सुख है तो उसके पीछे दुख भी है। पता नहीं हम कब समझेंगे इस चीज को, पर समझना तो हमें ही पड़ेगा। कोई हमें समझा सकता है, पर जब तक हम ना समझें तब तक उसके समझाने का क्या फायदा है। कितनी बार तो कितने तीर्थंकर आकर के चले गए हमको समझा के, कितने महान महान आचार्य हमको समझा के चले गए, कृपा करके अपने पीछे भी अपनी आवाज भी छोड़ के चले गए, पर हम उनकी आवाज ही नहीं सुन पाते। उनकी क्या, हम अपने आत्मा की, अपने अंतर आत्मा की आवाज सुनने से इनकार कर रहे हैं। आज अगर हम अपने अंतर आत्मा की आवाज सुनना शुरू कर दें तो मुझे नहीं लगता कि इन 10 दिनों को अलग से मनाना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि 365 दिन पर्युषण की तरह होंगे, सारे दिन पर्युषण की तरह होंगे अगर एक बार हम अपने अंतरात्मा की आवाज सुनना शुरू करते हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने अंतरात्मा की आवाज सुने। मान कषाय के बारे में मैं आपसे क्या कहूं, विनय के बारे में भी मैं आपसे क्या कहूं। ये जो कुछ होने और कुछ नहीं होने का पागलपन है ना भैया, वो ही तकलीफदायक है। मैं कुछ हूं ये एक तरह का पागलपन है, और मैं कुछ भी नहीं हूं ये दूसरे तरह का पागलपन है। आई एम समथिंग, आई एम नथिंग, साइकोलॉजी में दोनों चीजें ही है। देखो मैं कितना विनयवान हूं, ये भी कमती अहंकार नहीं है। हमें उतनी ऊंचाई तक पहुंचना है जहां हमारा स्वभाव हो जाए, स्वभाव मार्दवम चा। ये मनुष्य पर्याय मालूम कैसे पाई होगी, कभी ख्याल किया है? कोई मृदुता पूर्व जीवन में होगी स्वभाव से, कहते हैं वो मनुष्य आयु के लिए कारण बनती है। स्वभाव मार्दवम चा सूत्र जी का सूत्र है ये। उस मृदुता की वजह से ये पर्याय पाई होगी, और आज हम अपनी उसी मृदुता को खोते चले जा रहे हैं। मैंने तो कभी किसी सूरज को ये कहते नहीं देखा कि कितने दिन तो हो गए हम रोशनी देते ही रहते तुम्हें, तुम हमारी पूजा तक नहीं करते। कभी किसी नदी को हमने ये कहते नहीं सुना कि कितना पानी मैंने दिया है और तुम सब लोग मेरी पूजा नहीं करते। कभी किसी गाय को ये कहते नहीं सुना कि तुमने रूखा सूखा दिया पर मैंने तो तुम्हें अमृत के समान दूध दिया, तुम मेरी सेवा नहीं करते। ये जितने भी इस तरह के उपकार करने वाले विनयवान लोग हैं वे कहते नहीं हैं। अगर हम कहना शुरू कर देते हैं तो ये भी हमारा पागलपन है। कुछ होने का पागलपन तो है ही, कुछ नहीं होने का भी पागलपन है। दोनों से बचना आज जरूरी है। मैं और मेरेपन को तोड़ने की प्रक्रिया ही मृदुता की प्रक्रिया है। मंदिर मूर्ति भगवान सब काहे के लिए है, हमारे अपने मैं और मेरेपन को तोड़ने के लिए। और मजा हम लोगों के साथ ये है कि जितना जितना मैं हम बड़ा करते चले जाते हैं उतना उतना मेरापन भी बड़ा होता चला जाता है। या तो हम अपने मैं को बड़ा करने की जिद में मेरेपन को बढ़ाते हैं, या कि मेरेपन को बढ़ा करके हम ऐसी सांत्वना प्राप्त कर लेते कि मैं बड़ा हो गया, मेरे पास एक कार है इसलिए मैं बड़ा हो गया, मेरे पास बहुत अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास बहुत अच्छा घर है इसलिए मैं बड़ा हो गया। मेरेपन से मैं अपने को बड़ा करता चला जाता, या फिर मेरे पास कुछ भी नहीं है पर मैं अपने मैं को बड़ा करने की जिद में और अपने आस पास अपने मेरेपन को फैलाना शुरू। इतना ही झगड़ा है इस मैं और मेरेपन के दूर करने के लिए। भगवान की पूजा है, भगवान की स्तुति है। हम किसी की स्तुति नहीं कर पाते हैं, स्तुति करने का मन ही नहीं बनता, निंदा करने का मन बनता है। इसलिए शायद ये प्रक्रिया रखी गई है कि भगवान के सामने जाके करना अपनी निंदा और भगवान की प्रशंसा। प्रभुपतित पावन में अपावन, इतनी ही है पूजा, हो गई पूरी हो गई। इसके बाद की लाइनें तो इसी का विस्तार है और कुछ नहीं है। लाइन तो इतने में ही पूरी हो गई कि प्रभु पतित पावन हम प्रशंसा कर सके आपकी, और मैं अपावन हम निंदा कर सके अपनी, पर बनना है हमें भी पावन, इसलिए आए हैं। यो विरत आप निहार स्वामी मैट जावे। आप अपना कर्तव्य पहचानो, ऐसा भगवान से कह रहे हैं। आप अपना विरत अपना कर्तव्य पहचानो, इतना कहने का साहस किसके भीतर होता है? जो मृदु है, जो श्रद्धावान है, जीवित वही है जो श्रद्धावान है और मृदु है। एक छोटी सी घटना आपको सुनाता हूं, शायद समझ में आ जाए। मेरे पास समय भी बहुत थोड़ा सा है, मन नहीं करता। कभी कभी मन करता है कि आपसे बात करूं, कभी कभी मन नहीं करता कि बात करूं, क्या करूंगा बात करके। आपको जो करना है वो आप कर रहे हैं, जो आपको आगे करना है वो आपने तय करके रखा है। मैं होता कौन हूं आपके जीवन में डिस्टर्ब करने वाला? मेरी अपनी क्या एग्जिस्टेंस है? आप स्वीकार करते हैं, बिठाल देते हैं यहां तो बैठ जाता हूं, बाकी इसके अलावा मुझे अपने कल्याण की चिंता है। मेरे साथ आपका होता हो तो मुझे इनकार भी नहीं है। हम सब अपना अपना कल्याण करने के लिए यहां आए हैं, और एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण बनाएं जिससे एक दूसरे के कल्याण में सहयोगी बने। मैंने आपसे कहा था कि बहुत मुश्किल होती है मुझे, आप शायद चले जाने के बाद समझेंगे मुझे जब मैं यहां से चला जाऊंगा, और इस बात की पीड़ा लेकर के जाऊंगा कि शायद मैं ठीक नहीं था, मुझे लोग समझ नहीं पाए। आपसे सिर्फ ये बात कहता हूं कि बहुत मृदुता अपने भीतर लाइएगा और बहुत सरलता लाइएगा। राग द्वेष पूरी जिंदगी पड़ी है, चाहे जब कर लीजिएगा, पर वीत राग के चरणों में बैठकर थोड़ी सी वीत रागता की बात भी करिएगा। जिन धर्मायतनों और दिन धर्म गुरुओं के माध्यम से हमारे भीतर वितरागता आनी चाहिए, उनके माध्यम से राग द्वेष मत करिए। हमारे आचार्य महाराज एक ही बात कहते कि भैया कषाय न करो, चाहे जो करो, और वही बात बार बार मेरे जीवन में आती है कि सारा कुछ पढ़ा, सारा कुछ करा, इसके बाद भी अगर कषाय करी तो कुछ नहीं करा। आपसे मुझे यही बात कहनी है, और क्या कहूं, याद ही नहीं आता कि क्या कहूं आपसे। फिर भी याद करता हूं, आपसे कहता हूं, क्योंकि आपका आधे घंटे मुझे सार्थक बनाना है। अपनी पीड़ा कह के आपसे क्या सार्थक बनाऊंगा, मुझे सिर्फ ये कहना कि जब जब भी अपने मन में थोड़ा भी अहंकार आए, तब तब उस अहंकार को गौर से देखना कि क्या मैं इस अहंकार करने के लायक हूं या नहीं, और मैं ये जो अहंकार कर रहा हूं इससे मेरे जीवन का कल्याण होगा या नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अहंकार मत करिए, सब करते हैं, थोड़ा सा करना तो जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि वो अहंकार धीरे धीरे अभिमान बनता है, रिफाइन होके वो स्वाभिमान बनता है, और स्वाभिमान तो बहुत अच्छी चीज है, निराभिमान से अच्छी नहीं है। पर स्वाभिमान का मायना है अपना गौरव, अपने आत्म वैभव का गौरव तो हमें होना ही चाहिए, इतना स्वाभिमान तो हमारा होना ही चाहिए। ये हम भूल गए हैं, हम अपनी शाख भूल गए हैं कि हमारी क्या शाख है। एक समय हुआ करता था जब किसी जैनी व्यक्ति की गवाही होती थी तो जज इसलिए फैसला बदल देता था कि जैनी आदमी है, झूठ नहीं बोलेगा, यह हमारी शाख हुआ करती। हम विकृतियां पैदा करने वाले लोग नहीं हैं, हम शांति देने वाले लोग हैं। ये आज पूरे भारत में किसी से पूछ लीजिएगा कि अगर शांति का कोई संदेश देने वाला है तो आज भी एक समाज है जिसने कभी कोई झगड़ा फसाद नहीं किया, जिसने कभी अपने अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी है, जिसने सिर्फ हमने अपनी कोई ड्रेस नहीं बनाई, हमने कोई अपनी अलग टोपी नहीं बनाई, हमने कोई अपना माथे पर कोई अलग से तिलक बनाया क्या? हम जहां रहे हमने वैसा स्वीकार कर लिया, हम पंजाब में रहे हम पंजाबी के वेश में रहना स्वीकार कर लिया, हम अगर महाराष्ट्र में रहे तो हमने टोपी लगाना और धोती कुर्ता पहनना स्वीकार कर लिया, हम साहबों के बीच रहे तो हमने टाई बांधना स्वीकार कर लिया, हम पानी की तरह जहां हमें डाल दिया गया हम वहीं मिक्सअप हो गए। ये हमारा नेचर है, ये हमारा स्वभाव है, हमें स्वभाव को नहीं भूलना चाहिए। मैं आपसे कह रहा था कि एक छोटी सी घटना आपको सुनाता हूं। घटनाएं तो बहुत हैं, छोटी छोटी घटनाएं मेरे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन करती हैं, शायद आपके काम आए। मैं आपके बीच बैठा हुआ आपसे बात कर रहा हूं, बीच में बात करने का मन नहीं था तो वो भी कह दिया था कि मन नहीं कर रहा कि बात करूं, पर फिर भी बना रहा हूं मन, क्योंकि कुछ लोग हैं जो शायद ठीक ठीक समझेंगे। उन कुछ लोगों के लिए मुझे कहना है, उन कुछ लोगों में आप सब भी हो सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक कलाकार था, बहुत अच्छा कलाकार था, ऐसी मूर्तियां बनाता था कि हूबहू मूर्तियां बनाता था, कोई जज नहीं कर सकता था, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता था कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट कौन सी है, इतना परफेक्ट था वो। एक बार उसके मन में आया, सबके मन में आता है कि अगर मृत्यु आई तो क्या करेंगे, उसने सोचा कि मृत्यु को भी धोखा दिया जा सकता है। मृत्यु को धोखा देने का उपाय क्या है, और उसने उपाय सोचा कि मैं अपनी 10 मूर्तियां बनाऊंगा एक जैसी, और क्या करूंगा, 10 मूर्तियों के बीच बैठ जाऊंगा, जब मृत्यु आएगी तो कंफ्यूज कर जाएगी, तब फिर मैं बच जाऊंगा। अब उसका अपना गणित था, अब उसकी गैर बुद्धिमानी पर ना समझी पर हंसना चाहिए तो हंस लीजिए, पर हमारी भी अपनी ना समझी है, इस पर भी तो हमें कभी हंसना चाहिए, नहीं बल्कि इस पर तो रो लेना चाहिए, अपनी ना समझी पर। हम भी तो यही कर रहे हैं, कितने सारे रूप अपने बनाते हैं कि शायद इस रूप से हम सर्वाइव कर जाएंगे, शायद इस तरह हम पेश आएंगे तो शायद इस तरह पेश आने से बच जाएंगे। नहीं, एक बार अपने ओरिजिनल फेस में क्यों नहीं आ जाते हैं? उसने बनाना शुरू किया, 10 मूर्तियां बनाई, और सचमुच ऐसी बनी कि सामान्य व्यक्ति तो समझ ही नहीं पाता था। और वो क्या करता था, 5 इस तरफ 5 इस तरफ, बीच में खुद बैठ जाता था, 11 मूर्तियां मालूम पड़ती थी क्षण भर को, और 11 कलाकार मालूम पड़ते थे क्षण भर को। अब तो ऐसा हुआ कि मौत भी आई, और मौत भी एक बार चक्कर में आ गई कि किसको ले जाना है। कहानी है भैया, सच्ची सच्ची थोड़ी ही है, कहानी है। तो मौत आई, और वो भी एक बार मुश्किल में पड़ी, उसने चक्कर लगाया, बहुत घूम फिर के देखा चारों तरफ से, और चारों तरफ से घूम फिर करके, और मौत ने कहा कि और तो सब ठीक है लेकिन बस इतना ही पर्याप्त था, मौत को धोखा देना आसान नहीं है। उसने इतना कहा कि और तो सब ठीक है लेकिन, और अब वो जो ओरिजिनल कलाकार था उससे रहा नहीं गया, उससे रहा नहीं गया कि और तो सब ठीक है लेकिन कमी क्या रह गई, ये जल्दी बताओ। उसने कहा यही कमी रह गई, तुम बोल पड़े चलो। इतनी सी कमी रह गई कि तुम्हारा अहंकार अभी भी श्रेष्ठ है कि मैं बहुत बड़ा कलाकार हूं, मैं मौत को भी धोखा दे सकता हूं, ये तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। और मृत्यु उसे ले गई। किसने मारा भैया उसे? उसके अहंकार ने मारा कि मैं बहुत बड़ा कलाकार। इतनी छोटी सी अहंकार की स्थिति हमारी मौत का कारण बनती है, क्यों ना हम इसको अपने जीवन में कम करें, अहंकार को भी दिशा दें, हित करने वाला अहंकार करें। बेटे के सामने ये कहें कि बेटे देखो मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम क्या अपने पिता को पिता नहीं मानते? उसे पिता का एहसास करवाने का अहंकार फिर भी चलेगा, इतना तो ठीक है, लेकिन मैं पिता हूं इसलिए मुझे तुम्हें अपनी मेरे पिता की अपने पिता की बात माननी ही चाहिए, ऐसा अहंकार व्यक्त है। विनोबा के जीवन की घटना आपसे कहूं। विनोबा के पिता रोज की आदत थी, पता नहीं मैंने ये घटना कही आपसे कि नहीं कही, कहीं भी होगी तो फिर से कह देता हूं। विनोबा के पिता विनोबा को रोज डांटा करते थे, अपनी एग्जिस्टेंस फील करवाते थे कि मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम्हें डांट सकता हूं। आज की बात अलग है कि बेटा अपनी उपस्थिति का एहसास करवाता है पिता को कि मैं तुम्हारा बेटा हूं, मुझसे संभल के रहना, क्योंकि तुम्हारा जमाना गुजर चुका, अब ये मेरे जमाने का नया दौर है। अगर तुम मेरे साथ ठीक ठीक नहीं चलोगे तो पीछे छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि मैं बहुत आगे निकल रहा हूं। छोड़ रहे हैं आज के बेटे पिता को, धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। इसके पीछे छुपा हुआ अहंकार, वो पता नहीं जब वो पिता बनेंगे तब देख पाएंगे वो। पर वो रोज विनोबा को बुला करके डांटते थे कि विन्या तुमने आज ये काम ठीक नहीं किया, विन्या तुमने आज अपने कपड़े ठीक से नहीं धोए, विन्या आज तुमने मां की मदद नहीं करी। बस इतने छोटे छोटे से काम, इन कामों पर से कान पकड़ लेते थे, थोड़ा डांट देते थे। 10 बजे रात को भी अगर घर लौटे हैं और विन्या सो गया है तो उसको जगाते थे कि विन्या को जगाओ, जगा के सामने खड़ा होता था तो पूछते थे कि आज तुमने वो अपने कपड़ों पर प्रेस करना था करी नहीं करी, विन्या तुम ठीक नहीं करते हो, अपना काम ठीक करना चाहिए, और कान पकड़ देते, अच्छा जाओ सो जाओ। ये क्रम चलता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि ये क्रम टूट गया। विनय 8 बजे से इंतजार कर रहे हैं कि पिता तो आ गए हैं, 9 बज गए, 10 बज गए, सोने का समय हो गया, आज पिता ने बुलाया क्यों नहीं। ये बात विनय को पीड़ा देती थी, विनोबा को, कि आज पिता ने बुलाया नहीं, इतना पराया समझ लिया, डांटते थे तो डांट लेते, अपने तो मानते थे इसलिए ना डांटते थे, आज तो अपना भी नहीं माना, डांटा तक नहीं, बुलाया तक नहीं। बड़ी मुश्किल से रात गुजारी, सुबह सुबह पहुंच करके मां से जाके सुबह कहा कि पिता को क्या हुआ, पिता तो कितने भी अस्वस्थ रहते थे तब भी मुझे बुला करके डांटते थे, पर पिता तो आज 8 बजे आ गए थे, मुझे बुलाया ही नहीं। तो मां बोली कि मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं पड़ती, तुम ही अपने पिता से जाके पूछ लो कि उनको क्या हुआ है। डरते डरते विन्या पहुंचे, जबकि पिता ने कभी भी विन्या को गलत बात नहीं कही कि डर लगे, पर डरते डरते पहुंचे और कहा कि कल आपने मुझे नहीं बुलाया। तो पिता ने विन्या की तरफ देखा और कुछ नहीं कहा और इशारा किया कि उस टेबल पर जो लिखा रखा है उसको पढ़ ले तू। टेबल पर क्या लिखा रखा था, यही लिखा था कि आज मेरा विन्या, मुझे अचानक याद आया कि 16 वर्ष का हो गया है। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि 16 वर्ष का बेटा अब मित्र के समान है, उससे मित्र की तरह व्यवहार करना, उसे सलाह देना, उस पर अपनी आज्ञा नहीं चलाना। मैं आज तक 16 वर्ष तक अपने विन्या पर अपनी आज्ञा चलाता रहा, अगर मैंने अपनी आज्ञा चलाने में कड़ाई की हो तो मेरा विन्या मुझे क्षमा करे, लेकिन अब अपनी आज्ञा नहीं चला पाऊंगा क्योंकि वो 16 वर्ष का पूरा हो गया, अब वो मेरा मित्र है, कुछ पूछेगा तो सलाह दे दूंगा। मैं बहुत सांसारिक संबंधों की बात कर रहा हूं कि इतनी मृदुता तो हमारी संसार में सद जानी चाहिए थी, यहां परमार्थ में तो इससे भी आगे निकलना चाहिए था, लेकिन हम न संसार में ही ठीक ठीक से रह पा रहे हैं, न हम परमार्थ को ठीक ठीक से निभा पा रहे हैं। पूरी तरह भौतिकवादी हो गए होते तो भी ठीक था, या फिर पूरे आध्यात्मवादी, ये जो कचरा बीच की स्थिति है वो ही दुखदाई है। एक तरफ बात कर लेते हैं परमार्थ की और न ठीक से संसार जी पा रहे हैं और न परमार्थ समझ पा रहे हैं। 3 तरह की विनय होती है, जो हमारे मान को समाप्त करती है, एक मन की विनय, एक वाणी की विनय और एक शरीर की विनय। मन की विनय क्या है भैया? श्रेष्ठ विचार ही मन की विनय है, अच्छे विचार। फिर एक छोटी सी घटना सुनाता हूं कैसे अच्छे विचार। आसानी से हम अपने विचारों को अच्छा बना सकते हैं। बहुत आपने सुना होगा, पहले सुन चुके हैं, छोटी छोटी घटनाएं सुन लीजिएगा, जितनी जितनी याद आती जाती हैं उतनी। और कल से कुछ ऐसा करिएगा कि मेरा मन बनाइएगा थोड़ा सा, कि मैं आसानी से कह सकूं अपनी बात। सच कह रहा हूं आपसे, कहना पड़ रहा है। आपको नहीं लग रहा कि मैं कितना सोच सोच के आपसे कह रहा हूं? तो क्या हुआ, वो एक छोटी सी घटना है। एक बूढ़ी अम्मा थी, ट्रेन में चली जाती थी, और ट्रेन में उसने जिद करी कि वो खिड़की के पास बैठेगी। तो और लोगों ने उसका थोड़ा सा मजाक बनाया कि जैसे बच्चे करते हैं, ऐसे ही जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनका बचपन लौट आता है। देखो तो कैसी जिद कर रही हैं कि हमको तो खिड़की के पास बैठना, खिड़की के पास तो बच्चे बैठते हैं। तो पर बूढ़ी अम्मा की बात मान ली गई और उनको खिड़की के पास बिठा दिया गया। अब वो क्या करती थी, खिड़की के पास बैठ करके अपने पॉकेट में हाथ डालती, उसमें से कुछ निकालती, धीरे से छोड़ देती, फिर लोगों से बात करने लगती। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर में पॉकेट में हाथ डालती, कुछ निकालती और नीचे छोड़ देती। लोगों ने कहा कि बात क्या है, पूछना चाहिए। अम्मा, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं, आप कुछ ना कुछ निकाल करके बाहर डालती हैं, कुछ भी नहीं है, ये तो बीज है। तो अम्मा ये काहे के बीज हैं, ये मैंने बहुत मुश्किल से सुगंधित फूलों के बीज इकट्ठे करे हैं। अब मुझे यात्रा तो करनी है, एक स्थान से दूसरे स्थान तो जाना है, लेकिन ये पूरी जमीन मेरी है, ये सारा देश मेरा है, ये सारा देश मेरा है, तो सारा देश खुश रहे। मैं अपने सारे देश में खुशबू कैसे बिखेरूं? तो मैं तो ट्रेन में चलते चलते बीज डालती जाती हूं कि कहीं कोई बीज अगर रुक जाएगा जमीन में तो पौधा उगेगा, फूल लगेंगे, तो हमारे देशवासियों को सुगंध मिलेगी। कैसा विचार है ये, जो श्रेष्ठ विचार है, यही मानिएगा हमारे मन की विनय है। जब हम दूसरे के बारे में अच्छा अच्छा सोचते हैं, गंदा नहीं सोचते हैं, मानिएगा हम विनय से भरे हुए हैं। मतलब हमारे अंदर अहंकार नहीं है। हमको दूसरे की बुराई करने का मन बने तो कर लेना, पर अपना अहंकार भी देख लेना कि बिना अहंकार के बुराई हो ही नहीं सकती। विनयवान व्यक्ति बुराई कर ही नहीं सकता, बुराई देख लेने के बाद भी नहीं कर सकता। बड़ा मजा है दूसरे की बुराई देख करके उसकी बुराई कर लेने का। मन तो अच्छा है, बना लो, लेकिन अपना मन तो गंदा हो गया, अपने मन की विनय ईज़ तो चली गई। ऐसा हिसाब है, ऐसा गणित है। और वाणी की विनय, कहते मधुर बोलना, सत्य भी बोलना पर मधुर बोलना, कठिन वाणी नहीं बोलना। ये हमारे वाणी की विनय भी हमें सीखना पड़ेगी कि कैसे हम अपनी वाणी को हित मित और प्रिय बनाना है। कम से कम दूसरे को बुरी भले ही लगे, पर कर्म प्रिय तो होना ही चाहिए, कानों को सुखद मालूम पड़नी चाहिए, भले ही भीतर उसकी चोट बहुत गहरी पड़ती हो। जैसे कि घड़ा बनाने वाला भीतर हाथ पसार करके चोट लगाता है। चोट क्यों लगा रहा, घड़ा उसका है क्या, फोड़ना चाह रहा है? नहीं, वो उसकी खोट निकालना चाह रहा है। बस अकेली खोट निकालने के लिए अगर कोई सच हम कहें भी, तब भी बहुत धीरे धीरे, जोर से मत, नहीं तो फूट जाएगा। बस यही है वाणी की विनय, जिसमें हम अपनी वाणी को मधुरता देते हैं, और शरीर की विनय है अच्छे अच्छे काम करना। अच्छे काम मालूम कैसे किए जा सकते हैं, फिर आपको एक बताता हूं। एक वृद्ध व्यक्ति था, उसके बेटे थे, वे सब बेटे बहुत कमाने वाले हो गए और पिता तो अपने उसी फटी हालत में रहता था। पिता को इस बात का जरा भी गर्व नहीं था कि मेरे बेटे बड़े बड़े आदमी बन गए, और वे चार बेटे बहुत बड़े आदमी बन गए, पर पिता तो छोटे छोटे काम करता था। कभी मन आ जाता था तो घर के सामने झाड़ू लगाने लगता था। लड़के कहते थे कि पिताजी आप इतने बड़े रईस बच्चों के बेटे पिता हैं और आप ऐसा छोटा काम करते हैं। वो कहता था नहीं, गंदगी फैलाना अच्छा काम नहीं है, गंदगी साफ करना तो अच्छा ही काम। एक बार तो ऐसा हुआ कि पिता को पता नहीं क्या सनक आई और वो लोगों की जूठी आम की गुठलियां घर में ला करके रखने लगे। अब तो बहुत अति हो गई भाई, उन्होंने कहा कि आप अपने बाहरी कमरे में रहो, हमारे भीतर मत आया करो, हम आपको अपना पिता विता भी नहीं मानेंगे। ये क्या मचा रखा हुआ है, दूसरा कोई आम चूस करके गुठली फेंकता है और आप गुठली उठा के घर में रखते चले जाते हो। वो गुठलियां रखते चले जाते थे, उनको सुखाते थे और फिर पता नहीं कहां फेंक के आ जाते थे। कुछ पता ही नहीं लगता था बच्चों को कि क्या करते हैं, पर सोच लिया कि 60 साल के ज्यादा की हो गई, अब कोई बात नहीं, माफ करो, 60 साल से ज्यादा उनकी भी गलती नहीं है, उम्र कहीं तक आ जाए, ऐसा मान के बच्चों ने जो है और छोड़ दिया। पर पिता एक दिन ऐसा हुआ कि अपनी आयु पूरी करके समाप्त हो गए, लोग भूल भाल गए, लेकिन 2-4-5 साल के बाद जब लोगों ने देखा कि अरे पूरे गांव के चारों तरफ छोटे छोटे से पेड़, आम के पेड़ चारों तरफ गांव के उग आए हैं और वे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तब लोगों को मालूम पड़ा कि ये छोटा सा आदमी जो जिंदगी भर दूसरे का हित करता रहा, मरते मरते तक हित करके गया, इसने सच्चे कर्म किए हैं कि मेरे जाने के बाद भी ये लोग फल खाएंगे, मीठे मीठे फल खाएंगे। क्या हम ऐसा कृत्य नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, यही हमारे कर्मों की विनय है, यही हमारे शरीर की विनय है। और दूसरे ढंग से भी आप समझना चाहें तो भगवान के प्रति, जो सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति हम अपने मन में अनुराग रखते हैं, वो मन की विनय है। जो हम उनकी स्तुति पढ़ते हैं वो वाणी की विनय है, और जो हम उनके प्रति हाथ जोड़ करके ढोक देते हैं वो ही शरीर की विनय है। ये मंदिर में भी है और ये जीवन में है, दोनों में। मंदिर की विनय तो बरकरार है अभी भी कि हम भगवान से अनुराग रख के भागे चले आते हैं, उनकी स्तुति कर लेते हैं, उनको ढोक देते हैं, ये विनय तो हमारी ठीक है। लेकिन अब हमें संसार में अपनी वाणी को भी विनय देनी है, अपने कर्म को भी विनय देनी है और अपने मन को भी विनय देनी है। विनय से होता क्या है, विनय से रिसेप्टिविटी आती है, हम रिसेप्टिव हो जाते हैं, हम ग्राहक हो जाते हैं, हम निरंतर ग्रहणशीलता को बढ़ाते चले जाते हैं। जो जितना विनयवान है उतना ग्रहणशील है, जो विनयवान नहीं है वो कुछ ग्रहण नहीं कर सकता, पाया जाता है झुक करके ही पाया जाता है और अकड़ करके नहीं पाया जाता। हम सब कोशिश करें कि हम अपने जीवन का जो आनंद है वो पा सकें, उसको पाने के लिए विनयवान बने, दूसरे का भी ख्याल करें, सह अस्तित्व की भावना रखें, सब एक दूसरे के साथ जिएं, तो ही शायद हमारी ये पर्व मनाने की सार्थकता होगी। मैं कामना करता हूँ, आज चूंकि आपका इतवार भी है, मेरे साथ नमोकार करें इस भावना के साथ कि ये मंत्र हमारे जीवन को परिष्कृत करें।
विद्यासागर मुनि
गुरुवर शाश्वत शाश्वत सुख दर्शक जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है
जग जग विचियों में रच बच कर
अथवा शिव के निष्कंटक अथ में विष्कंटक बोता हो अव शांत निराकुल मानस तुम का चिंतन करते हो
सम
किया करते सुख दुख दानों की घड़ियों में
जीवों के जताए को काम न सताए को